प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिसे आपने हमें फिर से अवसर दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप रक्षा करें। हमारी प्रार्थना भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो चिंता और निराश में हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, नौकरी के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, आर्थिक उलझन में हैं, आप सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 3 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लिखा है, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र सार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए चला जा, क्योंकि परमेश्वर यहूदा राज्य को बंधुआई में नहीं जाने देगा। इसलिए वह राजा को प्रोत्साहित करना चाहता है, अन्यथा वह गलत निर्णय लेकर जल्दबाजी में मिस्र से समझौता न कर ले। अतः परमेश्वर यशायाह को आहाज से भेंट करने के लिए भेजता है। इस पद में ध्यान देने योग्य अनेक बातें हैं। पहली बात, यशायाह राजा से भेंट करने धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे के पास भेजता है। इससे हमें किसी बात का संकेत मिलता है, इस नाली से यरूशलेम के लिए जीवनदायक जल आता था, वहां मनुष्य अपनी प्यास बुझाता था। आपको पानी के पाइप से संतोष प्राप्त नहीं होगा, आपको वहां जाना होगा जहां पाइप से पानी निकल रहा है। मेरे प्रियो, यह उस तथ्य का प्रतीक है, आपको दाऊद के घराने से कोई आशीष प्राप्त नहीं होगी, परंतु उसकी वंशावली के दूरस्थ सिरे पर एक व्यक्ति जीवन का जल होगा। यह मनुष्य प्रभु यीशु है, वह दाऊद की वंशावली में जीवन का जल लेकर के आया था। पोखरे का मूल इब्रानी शब्द है बेरेकाह, अर्थात आशीष। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस देश में जल एक बहुत बड़ी आशीष है। यही शब्द भजन संहिता 84 उसके 6 पद में आया है, फिर बरसात की अगली वृष्टि, उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हर जगह जहां यह शब्द आता है वहां इसका अर्थ आशीष है। यह एक बड़ी रोचक बात है। यशाया को उससे वहां जाकर मिलना था। यहां ध्यान दे कि वह स्थान ऊपर वाला पोखरा था। ऊपर शब्द 30 बार आया है और 2109 के लिए काम में लिया गया है। आपको स्मरण होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 18 पद में मलकीसिदेक को परम प्रधान ईश्वर का याजक कहा गया है। अब परम प्रधान परमेश्वर की आशीषें नाली के अंत अर्थात सिरे में दी गई थी जब प्रभु यीशु इस संसार में आया था। धोबियों के खेत की सड़क, वहां की सड़कें आसपास की भूमि से अधिक ऊपर उठी होती थी कि यात्रियों के पांव धूल से बचे रहें। सड़क का आत्मिक अभिप्राय नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसके 17 पद में स्पष्ट है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। यह राज्य मार्ग पवित्रता का है। यशाया की इस उपमा को काम में लेगा जिसे हम अध्याय 35 के 8 में देखेंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यह रोचक प्रतीक मार्ग और सत्य और जीवन के बारे में है। भजन संहिता 84 के 5 में भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है। दूसरे शब्दों में धन्य है वह मनुष्य जिसके पास वह है जो मार्ग और सत्य और जीवन है। मेरे मित्रों ध्यान दें कि उनकी भेंट का स्थान धोबियों का खेत था। वहां लोग कपड़े धोने जाते थे। हमारे जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ है कि हमें अपनी जीवन शुद्ध करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 3 पद में यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अतः यह स्पष्ट है कि यशाया का वहां आहाज राजा से भेंट करने जाना एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इसमें हमारे लिए उत्तम आत्मिक अर्थ है। यशाया को अपने पुत्र सर्याशूब को साथ लेकर जाना था। बालक को ऐसा नाम देना एक अति विचित्र बात है, परंतु अध्याय 8 में हम देखेंगे कि उसके दूसरे पुत्र का नाम और भी अधिक विचित्र है, महर्षा लयाह शबज अर्थात शेष जन लौटेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर के पास एक विश्वास योग्य दल सदैव बचा रहेगा। यशाया 7 अध्याय उसके 4 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, और उससे कह सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तो तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रेम का सिर सोमरोन और सोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। मेरे मित्रों इस संदेश का उद्देश्य था कि आहाज को उत्तर देशों की सेनाओं से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने निश्चय किया है कि उनका प्रयास विफल होगा। अब समस्या तो यह है कि आहाज कैसे जाने। वह तो संशयवादी संदेही और अविश्वासी है। वह यशाया की बात पर कैसे विश्वास करेगा। मेरे मित्रों परमेश्वर ने किसी से नहीं कहा है कि वह निराधार बात पर विश्वास करे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी निकल पड़े और कहें मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। जी हां यह मूर्खता है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा करने को कभी भी नहीं कहा है। उदाहरण के रूप में देखें अपने उद्धार के निमित्त हम मेमने की बलि नहीं चढ़ाते। हमारा विश्वास परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु उसके दफन और उसके पुनरुत्थान के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। परमेश्वर ने हमसे अंधेरे में छलांग लगाने को नहीं कहा है। वह हमसे अंधेरे में छलांग लगाने को भी नहीं कहता है। वह हमसे कहता है कि हम ठोस आधार पर कही गई बात पर विश्वास करें और उसी को माने। आज बहुत सारे लोग हैं जो बिना आधार के ही किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, यह सोचकर कि हमारे पूर्वज इस बात को मानते थे और उसका जानना उनके लिए उचित नहीं होता है। प्रभु यीशु ही वह ठोस आधार है यहां पर। पहला क्रोधियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई सच्चा अविश्वासी है और वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहता है तो वह उद्धारक विश्वास में आएगा। मैं जितनों से मिला हूं जो कहते हैं कि वे विश्वास नहीं कर पाते, झूठ बोलते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, ओह मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं सत्य की खोज में हूं। वह एक लड़की के साथ व्यभिचार का जीवन जी रहा था और कहता था कि वह सत्य की खोज में है। सच तो यह है कि अंधा कोई भी नहीं है जब तक कि वह स्वयं देखना ना चाहे। स्वयं अंधा बनने का चुनाव ना करें। यदि कोई वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहता है और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु के पास आए तो परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। आज की समस्या यह है कि अधिकांश जन परमेश्वर के साथ ईमानदारी का सौदा नहीं करते हैं। जी हाँ, राजा आहाज की भी यही समस्या थी। वह परमेश्वर के साथ ईमानदारी का सौदा नहीं करना चाहता था। सुनिए कि वह क्या कहता है, यशाया 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। परमेश्वर जानता था कि आहाज में विश्वास नहीं था। वह राजा में विश्वास जगाना चाहता था, परंतु आहाज एक ढोंगी था, धोखेबाज था। ऐसे आज अनेक विश्वासी हैं। उसके आडंबरपूर्ण वचन को सुने कि वह आगे क्या कहता है। यशाया 7 उसके 12 पद में लिखा है, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। देखिए वह कैसा भला है, वह परमेश्वर की परीक्षा लेना नहीं चाहता। वह बहुत बड़ा ढोंगी है। धर्मशास्त्र में शायद ही दूसरा ऐसा कोई ढोंगी हो। यह अत्यधिक घृणित व्यवहार है। शायद परमेश्वर को भी ऐसा ही लगता है। यशाया 7 के 13 पद में लिखा है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार संडे स्कूल की कक्षा में शिक्षक नेक सामरी कहानी सुना रहा था। उसने कहानी में सजीवता उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। उसने बताया कि वह मनुष्य कैसे डाकुओं में घिर गया और घायल किया गया। उसके घावों से बहुत खून बह रहा था। उसने बताया कि कैसे वहां से एक याजक कटकर चला गया और फरीसी दूर से ही आगे बढ़ गया। अब वह उसे भले सामरी का उल्लेख करता है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ उसे व्यवहारिक बनाना चाहता था। उसने एक बालिका से पूछा, तुम वहां होते तो क्या करती? उसने कहा, मैं वहीं रुककर कुछ दिन उसकी सेवा करती। वहां एक छोटा लड़का था, वह पीछे नहीं रहना चाहता था, अतः उसने कहा, मैं उसके लिए टॉफियां लेकर के आता। शिक्षक प्रश्न पूछता रहा और अंत में एक निराश दिखने वाली लड़की से पूछा, तुम होती तो क्या करती? उसने कहा, मैं तो हाथ उठा देती। मेरा विश्वास करें, उस शिक्षक ने उसका चित्रण ही ऐसा किया था और वह लड़की सच कह रही थी। मेरे विचार में परमेश्वर हमारी पवित्रता के बारे में ऐसा ही सोचता है। मेरे मित्रों, आप यह ना सोचे कि आप यदि कहेंगे कि आप परमेश्वर को परख कर देखना नहीं चाहते तो आप बहुत बड़े धर्मी हैं। परमेश्वर ने तो स्वयं कहा है, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। मैं तो उन लोगों से अत्यधिक थक जाता हूं जो कहते हैं कि वे विश्वास में कदम उठाएंगे। ओह मेरे मित्रों, थोड़ा रुकें कि परमेश्वर आपके पाँव के नीचे ठोस आधार तो बनाए। प्रतीक्षा करना सीखें इससे पूर्व कि आप अपने आप को मूर्ख बनाएं। परमेश्वर के निश्चित मार्गदर्शन को खोजें। ऐसा न हो कि आप प्रभु यीशु की निंदा का कारण बने। परमेश्वर इस अविश्वासी राजा से कहता है, मैं तुमसे अपने संदेश पर विश्वास करने को नहीं कह रहा हूं कि यशाया ने कहा तो मान ले। मैं तुझे एक अलौकिक चिन्ह देना चाहता हूं कि तू जाने कि यह मेरा संदेश है। परंतु आहाज चिन्ह मांगने से इनकार करता है। अतः परमेश्वर अपनी ओर से चिन्ह देना चाहता है और यह चिन्ह आहाज के लिए ही नहीं दाऊद के पूरे घराने के लिए है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आहाज अपनी झूठी धार्मिकता दिखाते हुए कहता है कि वह परमेश्वर से चिन्ह मांगकर उसकी परीक्षा नहीं लेगा, परंतु परमेश्वर अपने भविष्यवाणी के वचन को निराधार नहीं छोड़ता है, अतः वह अपनी ओर से चिन्ह देता है। आइए हम पढ़ें यशाया 7 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को ठोस आधार पर रखता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कुमारी के गर्भवती होने की यह भविष्यवाणी सही है या नहीं, तो सुसमाचार वृतांत को पढ़ें। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 से 23 पद। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे मित्रों, यशाया 7 अध्याय उसका 14 पद धर्मशास्त्र का सबसे अधिक विवादित पद है। इसका कारण है कुंवारी का गर्भवती होना। अविश्वासियों ने इसे अस्वीकार किया है और कुंवारी के गर्भवती होने के विरुद्ध अनेक निष्फल प्रयास किए हैं। इसके वाद विवाद का मुख्य शब्द है कुंवारी, जिसे इब्रानी भाषा में अलमाह कहते थे। स्वर्गदूत ने यूसुफ को यशाया 7:14 का संदर्भ दिया था। इससे सिद्ध होता है कि मरियम यूसुफ से विवाह करने से पूर्व गर्भवती थी। यह एक प्रमाण है कि यह भविष्यवाणी उस स्त्री का उल्लेख कर रही है जो पुरुष के संपर्क के बिना गर्भवती थी। मती ने जो शब्द 1 अध्याय उसके 23 पद में काम में लिया है, वह एक यूनानी शब्द पार्थेनोस है, जिसका अर्थ है कुमारी। यही शब्द यूनानी देवी अथेना के मंदिर के लिए काम में लिया जाता था, पार्थेनोन, क्योंकि यूनानी अथेना देवी को कुंवारी मानते थे। जब अंग्रेजी बाइबल का नया संस्करण आया, तो उसमें कुंवारी शब्द के स्थान पर युवती शब्द लिखा गया और नीचे टिप्पणी में कुंवारी दिया गया, जबकि होना इसका विपरीत था। उनका कहना था कि अलमाह का अर्थ है युवती। इसमें कोई शक नहीं कि धर्मशास्त्र में अनेक अन्य स्थानों पर अलमाह को युवती अनुवाद किया गया है, परंतु वहां भी उसका अभिप्राय कुमारी से है, जो स्पष्ट है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसके 16 पद में अब्राहम का सेवक हारान जाता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे सही युवती के संपर्क में लाए कि इसहाक के लिए पत्नी सिद्ध हो, और वह रिबका के बारे में लिखता है, वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। यहां वह का मूल इब्रानी शब्द है नाराह, अर्थात युवती। वह कहता है कि वह युवती कुंवारी थी। उत्पत्ति 24 उसके 43 पद में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो देख मैं इस जल के कुएं के निकट खड़ा हूँ और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए। यहाँ कुमारी का मूल इब्रानी शब्द वही है अलमाह। अतः मेरे विचार में इस शब्द अलमाह को गलत समझना संभव नहीं है। इसका अर्थ स्पष्ट है कुमारी युवती, अर्थात जिस युवती का संपर्क किसी पुरुष से ना हुआ हो। जब कोई मुक्त विचारक कहता है कि बाइबल कुमारी से यीशु का जन्म लेना नहीं सिखाती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि उसे पूछूं, क्या तुम्हारे पाप ने तुम्हें बचपन में चिड़ियों और मधुमक्खियों के बारे में नहीं सिखाया था? वह यीशु के कुमारी से जन्म लेने को अस्वीकार कर सकता है, परंतु वह यशाया और मती द्वारा यीशु के कुमारी से जन्म लेने की बात का इनकार नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, यशाया की भविष्यवाणी पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि उसका नाम इमानुएल होगा, परंतु सुसमाचार वृत्तांतों में उसे कहीं भी इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, नहीं कहा गया है। वहां उसे यीशु कहा गया है, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, वह अपने लोगों का पापों से तब ही उद्धार कर पाएगा जब वह इमानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ। आप जब जब उसे यीशु कहते हैं, तब तब आप स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह परमेश्वर है और हमारे साथ है, हमारे लिए है। वह हमारा उद्धार करता है जो कुमारी से जन्मा था। क्या आपने उसमें अपना भरोसा रखा है? यशाया की यह भविष्यवाणी 7 अध्याय उसका 14 पद सुनकर शायद किसी ने उससे पूछा होगा कि ऐसा कब होगा। मेरे विचार में यशाया ने कहा होगा बहुत समय बाद। तो फिर उस पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि वह भविष्यवाणी सच है, मसीह का कुंवारी से जन्म होगा? क्योंकि यशाया की अन्य भविष्यवाणियां तो उन्हीं के देखते देखते पूरी हुई थी। उसकी एक भविष्यवाणी हिजकिया राजा और अश्शूरों के संबंध में थी और पूरी हुई। 15 लाख योद्धाओं की अश्शूर सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। यरूशलेम की दशा दयनीय थी, ऐसा प्रतीत होता था कि वे प्रबल होंगे। हिजकिया मंदिर में परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा कि वह उन्हें बचाए। परमेश्वर ने यशाया को उसके पास भेजा। यशाया ने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे, अश्शूर भीतर ना आ पाएंगे। उसने यहां तक कहा कि एक भी तीर यरूशलेम पर नहीं चलाया जाएगा। अब आप ही सोचिए कि 1.5 लाख सैनिकों के पास तरकश में तीर भरे हैं और यदि एक भी मनचला तीर चला दे तो यशाया को झूठा भविष्यद्वक्ता कहा जाएगा, क्योंकि तीर चल गया जबकि उसने कहा कि एक भी तीर नहीं चलेगा, तो वह झूठा हो जाएगा। परंतु यशाया ने राजा हिजकिया से जो कहा था वही हुआ, अर्थात एक भी तीर नहीं चला। नया नियम गवाह है कि प्रभु यीशु का जन्म यशाया की भविष्यवाणी के अनुसार कुमारी से ही हुआ था, जो कि 700 वर्ष पूर्व उसके बारे में कहा गया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो कुछ भी करता है आधार के साथ में करता है और हमारे जीवन के लिए करता है। यहां पर यशाया के द्वारा से उसने आहाज को भी अवगत कराया कि वह उसे नाश होने से बचा लेगा। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपके पास भी परमेश्वर का वचन किस रूप में आया है और किस रूप में आपसे बातें कर रहा है। आपको भी आगाह किया जा रहा है कि आप परमेश्वर के पास आ जाएं, बुराइयों को छोड़ दें, क्योंकि वह आपको बचाना चाहता है। आप इसे हल्के में ना लें, यह परमेश्वर का वचन है जो आज भी मुझसे और आपसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, इस वचन को गंभीरता से लें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।